तंत्र श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10 अध्याय 10 श्लोक श्रृंखला 38 शब्दों को आप मेरे पास दोहराइए। वाणी गुना अनुकतने श्रवण्यो कथायाम हस्तो च कर्मसो मनः तव पदयो नः स्मृत्यां शिरः तवः प्रणामे निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भवत भवत तनु नाम। वाणी गुणानुकतने श्रवणो कथायां वाणी गुणानुकतने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्मसु मनस तव पदयोर्ना हस्तो च कर्मसु मन तव पदयोर्ना स्मृत्यां शिर तव निवास जगत प्रणामे स्मृत्यां शिर तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने अस्तु भवत्तनुनाम दृष्टि सतां दर्शने अस्तु भवत्तनुनाम वाणी गुणानुकतने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्मसु मनः तव पदयोर्ना स्मृत्यां शिर तव निवास जगत प्रमा प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने अस्तु भवत्तनुना दृष्टि सतां दर्शने अस्तु भवत्तनुनाम हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्ना नित्यां सुरस्व निवास जगतस्य नामे दृष्टि सतांदर सन्यासुदरस्तनुनाम वाणी गुणानु कतने सवनो सताया माताजी शब्दार्थ वाणी शब्द बोलने की शक्ति गुण अनुकतने सदैव आपकी लीलाओं के विषय में बातें करने में व्यस्त श्रवणों कान कथायाम आपकी तथा आपकी लीलाओं के विषय में बातें करने में हस्तो हाथ पैर तथा अन्य इंद्रियां च भी कर्मशु आपका आदेश पालन करने में लगाकर मनः मन तब आपके पादयो चरण कमलों का नह हमारी स्मृत्याम ध्यान में लगी स्मृति में सिरह सिर तब आपका निवास जगत प्रणामे क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं और सर्वस्व सर्वस्व है तथा हमारे शिरों को नत होना चाहिए भोग के लिए नहीं दृष्टि देखने की शक्ति सताम वैष्णवों के दर्शने दर्शन करने में अस्तु इस तरह लगी रहे भवत तनुनाम जो आपसे अभिन्न है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद के। अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें, हमारे हाथ पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगे तथा हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करे। हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करे, क्योंकि सारी वस्तुएं आपकी ही विभिन्न रूप है और हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णवों के रूपों का दर्शन करे। तात्पर्य यहाँ पर भगवान को समझने की विधि दी गई है, यह विधि भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम। हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते नारद पंच रात्र। मनुष्य कृष्ण की सेवा में हर वस्तु को मन शरीर तथा सारी इंद्रियों को लगाना चाहिए। इसे नारद शंभु तथा स्वयंभू जैसे दक्ष भक्तों से शिक्षा लेना होगा। यही विधि है। हम भगवान को समझने की अपनी विधि नहीं गढ़ सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो भी कल्पना कर ले या मन से गढ़ ले उससे भगवान का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा विचार यतमत ततपत मूर्तपूर्ण होता है। कृष्ण चाहते हैं भक्त्या महम भक्त्या हम एक्य ग्राह्य, केवल भक्ति के कार्यों द्वारा मुझे समझा जा सकता है। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में यह अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम अर्थात भगवान की सेवा में अनुकूल भाव से लगे रहना कहलाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामम्यं ददाति स्वसदा। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पद कमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सजना रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनातैतं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणान्विता श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो मावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरत्रिषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे श्रीमद्भागवतम महापुराण ये वैष्णव संतों का परम धन है प्राण है। जो प्रसंग यहाँ पे चर्चा की जा रही है ये वास्तव में वैष्णव को अति प्रिय है। दामोदर भगवान का ये लीला जो है वैष्णव अपने चित्त को इसमें पूरी तरह से रमते हैं। ये लीला भगवान का उनके भक्तों के प्रति प्रेम और भक्ति का शक्ति का बहुत सुंदर दर्शन कराता है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हमारे वैष्णव आचार्यों में से एक आचार्य हैं। वो वृंदावन छोड़कर नवदीप धाम आ गए। जब वो सुने कि माँ यशोदा ने कृष्ण को लकिया दिखाकर डांटने लगे तो कहे कि कितना कठोर है यशोदा मैया, सची माँ ने कभी निमाई को ऐसे डांटे फटकारे ने, चलो हम वृंदावन छोड़कर चलते हैं। ये दामोदर लीला जो है अनेक अनेक संत लोग इसमें अपना चित्त को लगाते हैं। दक्षिण भारत के एक संत है अलवार नहीं ये अहोबलम के संत हैं। वैसे उनके संप्रदाय में वो आचार्य माने जाते हैं। दामोदर लील प्रसंग जब आता है तो उस प्रसंग को पढ़ते पढ़ते श्रवण करते करते पूरी तरह से ऐसे लीन हो जाते हैं इस लीला में कि 6 महीने तक वे मूर्छित अवस्था में रहते हैं दामोदर के इस लीला में। यू नो सेंट अहोबलम। और हाल ही में जगन्नाथ पुरी का ये सत्य घटना है। एक पुजारी रोज शाम को भागवत चर्चा किया करते और एक माँ हमेशा आया करती थी। वृद्ध है उम्र से और श्रवण करते करते बहुत भाव विभोर हो जाती और पुजारी जो था वो इस बात को जान लिया और वे ऐसे प्रसंग सुनाते जो बड़ा सरल हो और ऐसा प्रसंग जिसमें बहुत कृष्ण और भक्तों का भाव दिखाई पड़ता वो छुपा लेता था ताकि नहीं तो माता बहुत भाव विभोर हो जाती। एक दिन ऐसा हो गया वो बीमार पड़ी हो गई तो वो अपने पोते से कहा जाओ कथा का जो हमारा नियम है वो टूटना नहीं चाहिए। तो गए सुनकर आए, माँ बिस्तर में थी, दादी माँ बिस्तर में थी, पोते से कहा कि आज क्या प्रसंग। पुजारी जी ने सुनाया तो पुजारी जी ने देखा कि श्रोताओं में वो माँ नहीं है तो आज मैं बहुत ही रोचक और भावपूर्ण कथा श्रवण कराऊंगा, नहीं तो वो रोएगी और चीखने लगेगी, चिल्लाने लगेगी और लोटपोट हो जाएगी, आज ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो नहीं है। उनके अनुपस्थिति में ये कथा श्रवण करा दिया और जैसे ही कथा श्रवण करा दिया और पोता वापस घर आया कहा कि आज माँ यशोदा ने कृष्ण को लठिया दिखाया। और जैसे ये प्रसंग सुना वो भाव विभोर हो गई और रो रो के कहने लगी यशोदा तुम्हें थोड़ा सा भी आपको दया नहीं आई, कृष्ण कितने कितने कमजोर है, कोमल है, आपने उसको लटिया कैसे दिखाया, डांट कैसे दिया। इस प्रकार से कहते कहते इतने भाव विभोर हो गए उसका प्राण। यह सच्चा घटना है जगन्नाथपुरी में। तो इस प्रकार से ये कथा में बहुत ही सुंदर भाव छुपा हुआ है और ये जो प्रसंग है माँ यशोदा पहली बार कृष्ण को डांटी, आखिरी बार डांटी और इसके बाद माँ यशोदा इस घटना को कभी भूली नहीं, वो याद करते रही कि मैंने कृष्ण को डांटा है। उसे बहुत बुरा लगा। इस प्रकार से कृष्ण जो है पहली बार माँ से डांट खाकर उकन को घसीट घसीट के दोनों वृक्ष के बीच लेकर आए और दोनों वृक्ष धड़ाम करके नीचे जब गिरा, नल कुबेर मणिग्रह परिक्रमा किए और ये प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थनाओं के आखिरी श्लोक है, भाव इसका बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे सबसे पहले, इससे पहले वे अपने गुरु का स्मरण करते हैं और कहते हैं कि हे कृष्ण आज हम जो भी हैं जैसे भी हैं इसके पीछे हमारे गुरु का कृपा है, जो कल के श्लोक में हमने देखा। नारद मुनि इनका कृपा है, वे उनके ऋणी हो गए हैं। आज अगर हमारे जीवन में वसंत ना होते हम ऐसे ना होते। ये सतयुग की घटना है और ये द्वापर युग चल रही है। नारद मुनि हमारे ऊपर कृपा किए, उनका जो श्राप है वो हमारे लिए आशीर्वाद है। नारद मुनि इनको ऐसे श्राप क्यों दिए, क्योंकि प्राय नारद मुनि का स्वर्ग इत्यादि में आना जाना रहता है और कुबेर का बहुत इच्छा है कि मेरे दो पुत्र जो हैं इनका भी मन भगवान में लगे। नारद मुनि का प्रयास खूब रहा और जब उन्हें पता लगा कि कुबेर जी अपने परिवार सहित भागवत श्रवण करने हेतु शिवजी के धाम में आए हैं तो ये दो लड़के धीरे धीरे से पीछे खिसक गए। आकाश मार्ग से आकर देखा यही दो बालक है ना जिनको कुबेर जी हमेशा सुधारने का प्रयास करते, आज भागवत के कथा छोड़कर ऐसे हरकत कर रहे हैं, तो वह श्रापित किया। यह दुर्लभ मनुष्य देह जो है ये भगवान का भक्ति करने के लिए, और इस प्रकार से अगर ये हरकत सतयुग में कर रहे हैं जो कलयुग के नीच व्यक्ति भी नहीं करते हैं, तो सतयुग में ऐसा घटिया निकृष्ट कार्य कर रहे हैं, अगर उन्हें नारद मुनि का श्राप ना होता तो ये जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े पता नहीं कब मनुष्य देह प्राप्त करते। नारद मुनि का श्राप कैसा था कि वे वृक्ष बने कहां पे, वृंदावन में, और वृंदावन में वृक्ष बनकर ब्रजवासियों का दर्शन करते रहे लाखों लाखों। इस प्रकार से यहां पे वे अपने गुरु नारद मुनि के आभार प्रकट करके कहते हैं कि हे कृष्ण, अभी हम उनके ऋणी हैं, अब हम आपका दर्शन कर पा रहे हैं क्योंकि आपका कृपा हुआ है, आगे जीवन में हम कुछ ऐसे ही कार्य करेंगे जिससे सदैव हम आपका स्मरण करते रहे हैं। और कहते हैं कि वाणी, ये आखिरी श्लोक है, बहुत ही सुंदर भाव है इसका, भागवत के बहुत ही सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं में ये भी एक प्रार्थना माना जाता है। और कहते हैं वाणी गुणानु कथन, वाणी के द्वारा सदैव आपका गुणगान होता रहे। सबसे पहले वाणी का वर्णन कर रहे हैं, ये विशेष मनुष्य देह जो है अगर थोड़ा ध्यान दें तो ये जीवा जो है इससे हम भगवान का नाम ले सकते हैं। और 84 लाख योनियों में आप देखेंगे जलजा नवलक्षानी, 9 लाख प्रकार के जलचर वे जीवा से खाएंगे और सांस लेंगे पर भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। कोई मछली को आपने देखा भगवान का नाम लेते, बहुत मुश्किल है। जलजा नवलक्षानी स्थावर लक्षजन सती, और वृक्षों में वे भी आत्मा है, 20 लाख प्रकार के वृक्ष हैं, पर वृक्षों से आपने कभी सुना है वे कृष्ण का राम का नाम लेते, क्योंकि वाणी उनका जो है सुप्त अवस्था में। आगे कीट सर्प इत्यादि संख्या नाम, 11 लाख प्रकार के रुद्र कृमि संख्या नाम, 11 लाख प्रकार के सर्पों को जीव तो है पर वे भगवान का नाम लेते आपने सुना कभी नहीं, बहुत मुश्किल है। आगे 10 लाख प्रकार के पक्षियां हैं, ये पक्षियों में भी एकाध पक्षी का नाम कभी आ सकता है, गरुड़ जी का नाम आ सकता है, एकाध पक्षी का नाम आ सकता है, कभी तोते नकल करते करते राम कृष्ण बोल सकते हैं, पर खूब प्रयास करने के बाद मनुष्य सरलता से बोल सकते हैं। फिर प्राणियों का 30 लाख प्रकार के प्राणियों में बहुत मुश्किल है, पर मनुष्य यूनियों में हम देखेंगे बड़े आसानी से राम कृष्ण का नाम का उच्चारण कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये बहुत विशेष है। प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने चाइल्ड कैन टेक पार्ट, एक बच्चा भी इसमें भाग ले सकता है हरि नाम में। आत्मा चेतना का उन्नति करने के अलग अलग विधि हैं, सतयुग का विधि इसमें बच्चे भाग नहीं ले सकते हैं। द्वापर में त्रेता में भी बच्चे भाग नहीं लगते, पर प्रभुपाद जी कहते हैं इवन अ चाइल्ड कैन टेक पार्ट इन दिस, बच्चा भी बड़े आसानी से भाग ले सकता है, इतना सरल है ये। क्यों? केवल नाम लेना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सुंदर भगवान का नाम लेने के लिए ये जीवा मिला है। और सच पूछो, अगर इस जीवा से हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो तुरंत कलेर दोष निधि राजन, केवल दोष होगा, गलती होगा हमारे द्वारा। केवल हरि नाम लेने के लिए हमें यह मनुष्य शरीर दिया गया है, तो इसलिए कहते वाणी। पर वाणी हमारा भगवान का गुणगान कब करेगी? जब हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करेंगे। तो आगे कहते हैं कि श्रवणो कथायाम वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम, आपका कथा बार बार श्रवण करते रहे, बार बार भगवान का कथा श्रवण करते रहे। ये भगवान का कथा ये कानों को और मन को बहुत ही रुचिकर होता है। ये कान जो है इसे भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। भागवत में पहले स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न किया जाता है, एक मिर्यमान पुरुष को अपने जीवन में करना क्या है? तो इस विषय पर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी महाराज जी इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि वो मंगलाचरण भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है, ये जो प्रश्न करते हैं, जो उत्तर देते हैं और जो प्रश्न उत्तर को सुनते हैं, तीनों को लाभ प्रदान करता है, जैसे गंगा तीनों लोगों को। ये प्रश्न सबको पूछना चाहिए। तो परीक्षित महाराज जो है वो थोड़े देर रुक जाते हैं और सुखदेव गोस्वामी महाराज जी की ओर देखते हैं। आप कहते हो कि सबको ये प्रश्न पूछना चाहिए, पर मैं अपने जीवन में देखता हूं या हम अपने जीवन में देखते हैं कि कौन ये प्रश्न पूछता है? हमारे परिवार के सदस्य, हमारे सगे संबंधी दोस्त मित्र कौन ये प्रश्न पूछता है? मिर्यमान पुरुष को अपने जीवन में आगे करना क्या है? क्या आपने सुना किसी को ये प्रश्न पूछते हुए स्कूल में, कॉलेज में या जहां आप व्यापार करते हैं वहां पे? कभी आपने आपके पड़ोसी से सुना कि जो व्यक्ति मरने जा रहा है उसको करना क्या चाहिए? तो ये प्रश्न चिन्ह परीक्षित महाराज जी के चेहरे में सुखदेव गोस्वामी महाराज जी देखते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि लोग प्राय ये प्रश्न नहीं पूछेंगे, क्योंकि संसार के लोग कैसे हैं? फिर कहते हैं कि वे पशु के भांति है, वे कैसे हैं? तो कहते हैं कि स्व यानी कि उनका चेतना स्वविद उष्ट्र और खर। तो कहते हैं कि उनकी चेतना कैसा है, भले मनुष्य शरीर है पर स्व यानी कि कुत्ता जैसा है, उष्ट्र यानी कि ऊंट जैसे उनका चेतना है और गदा जैसे मेहनत करने में अपना जीवन यापन करते हैं। भरा यानी कि डुक्कर यानी कि पिग। प्राय वो उन चीजों को सुनने के लिए रुचि रखते हैं जो लोग इसी चेतना के जैसे हैं, जैसे वो सुनना चाहते हैं कि वो मेहनत करके, खूब मेहनत करके अमीर बन गया है, तो ये एक प्रवृत्ति किसका है? ये एक गधे का है। ऊंट का प्रवृत्ति क्या है? वो अपना ही खून को चूसता है और कहता है कि बहुत मीठा है। वो ऊंट जो है वृक्ष के, रेगिस्तान के वृक्ष के फल को चबाने लग जाता है, और रेगिस्तान के वृक्ष कैसे होते हैं? इसमें कांटे होते हैं, तो वो वृक्ष के फल जो है कांटेदार, उसे छूने से उनके जीव में, मुख में खून आने लग जाती है, और खून आने से थोड़ा नमकीन हो जाता है, तो बोलते हैं स्वाद अच्छा है। वो अपना ही खून को पी रहा है। ये प्रवृत्ति जो है अपने ही रक्त को नष्ट करके आनंद लेने का जो प्रवृत्ति है, इसे अवैध संग या फिल्म स्टार, अभिनेता अभिनेत्री की कथा सुनने में रुचि लगाते हैं। इस प्रकार का रुचि, इस प्रकार के बातें सुनने में वो रुचि लगाते हैं। तो इस प्रकार से प्राय संसार के लोग भगवान के विषय में सुनने में रुचि नहीं रखते हैं, और इनका प्रार्थना एकदम तीव्र है, उनके आंखों में अश्रु है, और गिड़गिड़ा के कृष्ण से कह रहे हैं कि हम आपसे यही आशीर्वाद या यही कृपा या यही आप हमें वरदान दीजिए कि आपके कथा हम श्रवण करते रहें, क्योंकि संसार के लोगों में हम वापस जाएंगे या उनके बीच में रहेंगे, उनके जैसे हमें नहीं होना है, हमें आपका कथा सुनने का पूरा पूरा मौका मिलते रहे। ये सुंदर प्रार्थना है। इसी प्रकार का प्रार्थना पंचम स्कंद में पृथु महाराज भी करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा एक शरीर दीजिए उसमें दो कान नहीं हजारों लाखों कान हो। तो पृथु महाराज को एकाएक लाखों कान आ गए। फिर वो लाखों कान जो उनके शरीर में थे और वापस दो कान में आ गए, यानी कि लाखों कानों का शक्ति उनके, और इन कानों से वे भूतकाल में जितने भी भक्तों ने कथा किए उसे श्रवण किए, वर्तमान में जो कर रहे हैं और भविष्य में करने वाले उनका श्रवण करते रहे। लाखों कान से क्या करेंगे, श्रवण करेंगे। अब कृष्ण कथा कहाँ हो रही है? प्राय हम देखेंगे जितने भी इस्कॉन सेंटर में कथा होती होगी तो पृथु महाराज के कान वहां पे होंगे और श्रवण करते हैं। तो इस प्रकार से कानों से, और चार कुमार उनके राज दरबार में आए और उनके कथा श्रवण करते रहे। इसी प्रकार के प्रार्थना रूप गोस्वामी पाद भी कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे हजारों लाखों कान दीजिए, ये दो कान से मैं आपका कथा श्रवण करके तृप्त नहीं होता हूँ। अनगिनत कान दीजिए, क्योंकि आपका आपका जो लीला है, गुण है, रूप है, नाम अनगिनत है, इसे मैं बार बार सुनना चाहता हूँ। कितना सुंदर ये प्रार्थना है। तो इसी प्रकार का प्रार्थना यहाँ पे हम देख रहे हैं। हाथों से क्या करें, हम सेवा करते रहें जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। लगभग इसी प्रकार के बातें हम देखते हैं नवम स्कंद में। अम्बरीश महाराज के विषय में जब वर्णन आता है तो कहते हैं कि सवय मन कृष्ण पदारविंदयो। तो कहते हैं कि अम्बरीश महाराज कैसे हैं? वे ऐसे महान भक्त हैं जो श्रवण, कीर्तन, स्मरण ये सब करते हुए, भक्ति के नौ विधियों का पालन करते हुए, आत्मनिवेदन करते हुए वे सब के सब में निपुण है। उनका मन पूरी तरह से भगवान में लगा हुआ है। सवै मन कृष्ण पदारविंद, उसका जिसका मन भगवान में लगा हुआ है उसका प्रमाण क्या है? तो कहते हैं कि वाचांसि, वो उनका वाणी उसका प्रमाण होगा। वो क्या बात करते हैं? तो कहते हैं कि वैकुंठ का गुणगान करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। किसका मन भगवान में लगा हुआ है उसका प्रमाण क्या है? उनके वाणी है। वो क्या बोलता है, क्या कह रहा है, इसे पता लग जाता है किसका मन कहां पे लगा है। तो इसी प्रकार से अम्बरीश महाराज जी के विषय में कहते हुए कहते हैं कि उनका मन सदैव भगवान में लगा हुआ है। यद्यपि उनके सामने उनको मारने के लिए एक बहुत बड़ा एक कृत्य जैसे असुर आए थे, पर वे भगवान में अपना मन लगा था और भगवान का नाम श्रवण और कीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से अम्बरीश महाराज जी जैसे भाव यहाँ पे भी प्रकट दिखाई पड़ रहा है और पांव से भगवान का मंदिर का प्रदक्षिणा करते रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि हम सदैव भगवान का स्मरण करते रहे हैं और हर एक वस्तु को प्रणाम करते रहे, क्योंकि हर एक वस्तु जो है ये आपसे संबंधित है। हे कृष्ण आपसे संबंधित है। एक बार प्रभुपाद जी से उनके शिष्य पूछे, प्रभुपाद जी शुरू के दिनों में पार्क में वॉकिंग कर रहे थे तो उनके शिष्य आए थे, कहा कि प्रभुपाद जी एक लंबा दीवार था, प्रभुपाद जी आप कहते हैं कि भगवान सब जगह हैं, तो यस प्रभुपाद जी बोला सही है, तो अब बताइए ये जो दीवार है इतना लंबी, इस दीवार के इस कोने में है कृष्ण या उस कोने में है। तो देखिए प्रश्न क्या है और प्रभुपाद जी ने कैसे जवाब दिया होगा, बताइए कृष्ण इस कोने में है कि उस कोने में है। तब प्रभुपाद जी ने कहा जब आप मेरे जूतों को देखते हो, जब आप मेरे जूतों को देखते हो तो आपको किसका स्मरण आता है। प्रभुपाद जी जब आपके मोजे और जूतों को हम देखते हैं तो आपका स्मरण होता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा इसी प्रकार से शुद्ध भक्त जो है जब दीवार को देखते हैं, पानी को देखते हैं, हवा को महसूस करते हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं, ये पत्थर को देखते हैं तो तुरंत स्मरण करते हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय का वो श्लोक क्या है, भूमि आपो अनलो वायु, ओ ये भूमि है ये किससे आया हुआ है, कृष्ण से। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उन्हें समझाया और यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि हम हर एक वस्तु को प्रणाम करना चाहते हैं क्योंकि ये वस्तु आपसे संबंधित है। और आगे प्रभुपाद जी इसी प्रकार से एक महान आचार्य हैं, वे हर एक जीव को जब दर्शन करते हैं तो सोचते हैं कि इसे मैं कैसे भगवान की सेवा में लगाऊं, ये से वंचित हो रहा है इसे सेवा में कैसे लगाऊं। वो आपको अच्छा चित्र बनाना आता है तो आप थोड़ा सा चित्र कृष्ण के लिए बनाओ। आप देखते हो जितने भी कृष्ण आर्ट पहले यहाँ पे लगी रहती थी वे उन शिष्यों के द्वारा बनाए गए थे जो प्रभुपाद जी से मिलकर 3 महीने या 2 महीने हो चुके थे। आप लिख सकते हो तो बोला कि आप मुझे मदद कीजिए ग्रंथ लिखने में, तो इस प्रकार से आप गा सकते हो तो भगवान के लिए गाइए। तो हर जीव को और हर वस्तु को, एक बार प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क के गगनचुंबी इमारत में खड़े होकर नीचे देख रहे थे, बहुत सारे ट्रक देख रहे थे, तो बहुत देर से वो प्रभुपाद जी घुर घुर के देख रहे थे तो शिष्य सोचने लगे प्रभुपाद जी इस भौतिक जगत ये भौतिक वस्तुओं को देखकर इतना ध्यान से बड़े गंभीरता से क्या सोच रहे हैं। तो प्रश्न जिज्ञासा किया प्रभुपाद जी व्हाट आर यू सीइंग, तो बोला कि प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं ये ट्रकों को देख रहा हूं, कहा कि ये ट्रक जो है ऐसे भर भर के जा रहे हैं तो मैं सोच रहा हूं कि इन ट्रकों में कैसे ग्रंथ हम भर के एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाएं ताकि ये सारे ट्रक जो है भगवान की सेवा में लग जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सब प्रार्थना कर रहे हैं और इनका चेतना कितना शुद्ध है। एक समय था सतयुग में जब उन्हें वो भी याद है कि हम कैसे थे। अगर उस वक्त भगवान उनके नजदीक आते तो वो तुरंत हाथ जोड़कर यही कहते, हमें खूब तंदुरुस्त शरीर मिले जिससे हम और इंद्र तृप्ति का कार्य करें। पर देखिए नारद मुनि का कैसा कृपा हुआ, वो ही अशुद्ध चेतना इतना शुद्ध हो गया कि इतना सुंदर प्रार्थना यहाँ पे कर रहे हैं, जिसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी महाराज भागवत में कर रहे हैं। यहाँ से हमें शिक्षा लेना चाहिए, भगवान के सामने हम खड़े हैं तो हमें इसी प्रकार का प्रार्थना करना चाहिए, हमें आपका भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी भगवान तो देते हैं, अभक्तों को भी देते हैं, नास्तिकों को भी देते हैं, तो हमें ऐसा प्रार्थना करना चाहिए कि निरंतर हमारा मन आप में लगे रहे। जैसे कुंती महारानी कहते हैं, जैसे नदी का धारा जो है सीधे सागर की ओर जाते हैं, इसी प्रकार से मन स्वाभाविक आप में लगते रहे भगवान के सामने। वही भगवान जो नल कुबेर मणिग्रह का दर्शन दे रहे हैं, वही भगवान हमें भी दर्शन दे रहे हैं गिरधर जी के रूप में। क्या हमारा चेतना नल कुबेर जैसे हो गया हा? जब वो भगवान का दर्शन कर रहे थे वैसा है। एक कथा प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बुढ़िया माँ थी, जंगल से सूखे सूखे लकड़ी काट काट कर लेकर आती है। एक दिन वो पोटली उठाते उठाते केले के छिलके पे पांव लगी, धड़ाम करके गिरी, पीठ पे चोट लगी और उठाने में कष्ट हो गई। ओ करुण आवाज ध्वनि से पुकारने लगी, हे गोविंद, हे कृष्ण। और उनके करुण पुकार में इतना तीव्रता थी कि भगवान उनके सामने तुरंत प्रकट हो गए, द्विबीज मोरपंख धारण करके, मुरली धारण करके खड़े हो गए। मां बताइए आपने क्यों मुझे पुकारा? बोला, हे गोविंद, हे कृष्ण, आप आए, अच्छा हो गया। बस कमर बहुत दर्द कर रही थी, अब मैं सोच रही थी कैसे मैं उठूं। उठ तो मैं गई पर अभी उठाने में कष्ट हो रही है, लकड़ी का जो ये पोटली है ये आप उठाकर मेरे सर पर रखिए। तब कृष्ण देखते रह गए। देखिए भगवान गिरधर जी यहाँ पे खड़े हैं, वे प्रचुर मात्रा में सबको खिला पिला रहे हैं। प्रभुपाद जी का एक और छोटा का उपाख्यान कहते हैं, क्योंकि एक माँ थी, गांव में मेला लग गई और मेला लगते ही हजारों की संख्या में लोग आ गए और वो माँ रोने लग गई, हाय हाय अब क्या करूं कैसे करूं। तो उसके बेटा आया और बोला, माँ क्या हो गया, रो क्यों रही है? बोला, इतने सारे लोग इतने देर से खड़े हैं, अब रात हो जाएगी तो उनके लिए खाने के लिए और सोने के लिए व्यवस्था मैं कैसे करूं। तो बेटा हंसने लगा, आप चिंता मत करो, समय होते ही सब ठीक हो जाएगा। और शाम हो गई और सब अपने अपने घर गए। फिर बोला, देखो माँ पूरा खाली हो गया। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं, इस जगत में बहुत सारे जीव हैं पर हमें ऐसा टेंशन नहीं लेना चाहिए कि अरे अब इन जीवों को खाना कौन खिलाएगा, इनके सोने के लिए जगह कौन देंगे। भगवान ने हर जीव के लिए व्यवस्था पहले से ही बनाए रखे हैं। जब भगवान सामने आते हैं तो हमें क्या पूछना चाहिए भगवान से, ये नहीं कि वो गिरा हुआ जो सामान है वापस हमारे सर पे लगाए, कितना मूर्खता वाली बात रहेगी। भगवान से यही पूछना चाहिए, भगवान मेरा मन आप में बारम्बार लगते रहे, ना धनम ना जन्म ना सुंदरम कविताम वा जगदीश कामने मम जन्मनि जन्मनेश्वर अवतार भक्ति अहेतु की तभी। तो इस प्रकार के सुंदर प्रार्थना आज नल कुबेर और मणिग्रह कर रहे हैं और ये केवल नारद मुनि की कृपा से हो रहा है। और ये भी वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे गुरु नारद मुनि का कृपा है, नहीं तो हम वही गंदे नाले के कीड़े जैसे हैं जिसे कोई उठाता है तो फिर से वो गंदे नाले में चला जाता है। हमारे पिता कुबेर जी कितने बार हमें सत्संग में लेने का प्रयास किया, फिर से हम वो गंदे कार्य में लगते थे। पिकनिक में जाना, म्यूजिक सुनना, उसी में लगते थे। वह उस प्रकार के हमारा मन गंदे नाले के कीड़े जैसे। पर हे गुरुदेव जी का कृपा हुआ, उनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हे कृष्ण आपसे यही भीख मांग रहे हैं कि अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो वाणी से आपका गुणगान करें, कानों से आपके कथा श्रवण करें, मन सदैव आप पे लगे रहे, हमारा मस्तक जो है बारंबार आपको प्रणाम करते रहे, यही हमारा आपके चरण कमलों में प्रार्थना है। ऐसे करते हुए वे रो रो के परिक्रमा करते करते हजार दंडवत प्रणाम कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं। और बाल गोपाल कृष्ण जो घसीट घसीट के उकल लेके आ रहे थे, मुस्कुराते हुए उनको आशीर्वाद दिए और दोनों अपने धाम वापस गए और उनका जीवन सफल कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सुंदर प्रार्थना भागवत में अनेक जगह में भक्तों द्वारा हम सुनते हैं। गुरु महाराज भी कहते हैं भक्तों के संग में हमें कथा श्रवण करना है, भक्तों के संग में कथा श्रवण करना है, कीर्तन करना है, यही है मन आप में लगना। तो ये प्रार्थना ही हमें भगवान से करना है, यही शिक्षा आज के प्रसंग से हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न एकादा है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो सरल कथा है, मैं एकदम सरल कथा कहता हूं, सिंपल। यस दामोदर देव प्रभु यहां का आज सम। थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्णा। पांचाकल्पतृभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद जी की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।